जिनके होठों पर बंसी विराज रही है, अधरों पर इतना सुंदर उनका सौंदर्य है, उनके ऐसे गुण हैं, और आज तक भी मैं
जो कहते हैं हमें मैं गुरु हो गया, वैष्णव हो गया, मेरे अंदर में कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया,
और मैं रोज उनको सपने में देखता हूँ या देखती हूँ, उनसे बातचीत हमारी होती है, तो क्या समझो कुछ भी प्रेम नहीं। जानन्ते एव जानन्तु न मे भोक्त्वा अपनो मनसो वपुषो वैभवम् अगोचरम्। जो कहते हैं जी कृष्ण को मैंने देख लिया, कृष्ण का सब तत्व समझ लिया, वो कुछ नहीं समझे। मैं चारों वेदों को प्रकट करने वाला जो ब्रह्मा हूं, आठ नेत्रों से देखता हूं, चार मस्तिष्क से विचार करता हूं, मैंने तो कुछ नहीं समझा। तो जो ये कहते हैं कि मैं जानता हूं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, यही भक्ति का विचार है। इसलिए ये गोपियां महाभाव की अवस्था में हैं, इसलिए ये करेंगे कृष्ण में तो हमारा प्रेम नहीं हुआ। अरे देखो तो नरीक्षम नरीक्षक कृष्णम नरीक्ष बनितोत्सवरूपशील सत्वाच तत् वेण विविक्त गीतम दिव्याभिमान कथय स्मरण स्वारा भर्षत प्रसून कबरा मुमोहर बेनव्य। पहले हिरणियों के लिए कहा, हिरणियों के लिए कह रहे हैं, अरे देखो तो ये हिरण होकर के धन्याश्व मूढ़ मतयो। कल इसकी मैंने व्याख्या थोड़ी सी की थी, संक्षेप में बतलाऊंगा पूरा, इतना नहीं तो एक एक श्लोक में ही एक दो दिन तीन तीन लग जाएगी। खूब संक्षेप में सूत्र के रूप में बतला रहा हूँ, शायद शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने भी बतलाया होगा। कहते हैं कृष्णम निरीक्ष बनितोत्सवरूपशीलम। देखा भाई धरणियों जैसा हमारा सौभाग्य नहीं होगा, ये संभव पर नहीं। उनके सामने जाकर के कृष्ण के मुखारबिंदु को देख करके प्रणय की भिक्षा मांगूंगी, इसलिए जन्म जन्मांतर में हिरण होकर के ही जन्म, ये संभव पर नहीं। हमने तो ऐसा कोई सुकृति नहीं किया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इतने में देखा आकाश में विमान सब चल रहे, भाव नेत्र से देख रही है। गोपियों का संकल्प कभी भी मिथ्या नहीं होता, अरे साधारण पुरुषों का नहीं होता है, भक्तों का। कृष्ण तो सत्य संकल्प है ना, और गोपियां कृष्ण ही स्वरूप हैं। ब्रह्म संहिता में बतलाया नहीं गया क्या, ताभी एव निज रूपतया कला निज रूपतया, इसलिए गोपियां उनकी निज रूप है, तो उनका संकल्प कैसे ही वृथा होगा। इसलिए जो भी संकल्प कर रहे हैं वो ठीक, वो सत्य है, परम सत्य है। देखा जाए आकाश में चारों तरफ में देवताओं विमान में और उनकी पत्नियां विमानों में चढ़ करके कृष्ण की वेणु गीत को सुन करके कृष्णम निरीक्ष बनितोत्सवरूपशीलम। देखा जाए कृष्ण को कैसे देखा, बनितोत्सव, आज बनिताओं का उत्सव हो रहा है, बीच में कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और ऊपर से इनको देख करके विमान से वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं देवता लोग। किंतु देवताओं का वह सौभाग्य नहीं है जो उनकी पत्नियों का सौभाग्य है। अजय ये कैसे, अरे ऐसे जैसे यज्ञ पत्नियों का जो सौभाग्य था उनके पतियों को यह नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। नाग पत्नियों को जो सौभाग्य मिला था उसके पति काली को वो सौभाग्य रहा? नहीं रहा। उसी तरह से बनितोत्सव रूपशीलम, पति लोगों ने देखा और साधारण रूप में देखा, किंतु ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। बंसी भी उनके कानों में गई या नहीं गई, कृष्ण को गोचारण करते हुए थोड़ा सा देखा झलक में, उनकी बंसी की निनाद वेणु का नाद उनके कानों में नहीं गया, किंतु किन के कानों में गया? वो आए किस लिए थे? वो नहीं आते, उनको इससे कोई मतलब नहीं था, वो तो अपनी पत्नियों के कहने से विमान को लेकर के उनको दिखलाने के लिए ले आए थे। किंतु उनको भक्ति नहीं थी, किंतु इनकी भक्ति थी, तो उन लोगों ने तो देखा नहीं, वो मूर्छित नहीं हुए, कृष्ण का वेणुनाद भी उनके कानों में नहीं गया देवताओं के। चित्रकेतु उपाख्यान से देखो ना, आयना है, चित्रकेतु महाराज देख रहे कि इंद्र को हुआ, इंद्र ने भगवान का की भक्ति मांगी, जैसा कि चित्रकेतु महाराज ने वृत्रासुर होकर के जो भक्ति मांगी, अजात पक्षामी ओ मातरम खगा, कहा उन्होंने अरे दुर्भागा इंद्र, उनको कहा दुर्भागा इंद्र। भगवान से जब मिलेंगे तो कहेंगे बामन देव हमारा यह जो स्वर्ग राज है इसको सुरक्षित रखिए, भक्ति नहीं मांगी, और कहां इनको देखिए। इसलिए देवताओं को वो चीज सौभाग्य नहीं है, वो भक्ति नहीं है जो इनको है। इसलिए वनितोत्सव रूप शीलम, वनिताओं का उत्सव, बीच में कृष्ण हैं, उनको देखा, वेणुनाद करते हुए देखा, और देखा क्या जी गोपियों के साथ में विलास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कभी उनके पैरों के जो छिटक जाते हैं ऊपर उसको भी बांध रहे हैं। कृष्ण का यह देख करके और क्या देखा, ये तो उनका भाव देखा, विलास देखा, और रूप कैसा रूप, त्रिजगत को आकर्षण करने वाला कृष्ण का रूप देखा, जिस असमोर्ध ऐसा रूप न हुआ है न होगा। नारायण का भी रूप नहीं है, श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जनस्य, श्यामस्य बाम्बुज बद्ध तनुं कदाहं त्वाम इंदिरा विरल रूप भराम भजाम, श्यामस्य, श्याम का कैसा स्वरूप है। नारायण को भी मुग्ध, लक्ष्मी के जो कांत हैं उनको भी मुग्ध करने वाला रूप है, वो भी मुग्ध हो जाते हैं ऐसा उनका। और उसमें में मूल महालक्ष्मी स्वरूपा सर्वलक्ष्मी मई श्रीमती राधिका जी को बाम अंगों में रख करके आलिंगन कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, वो तो त्रिजगत आकर्षी वो रूप है। देवियों ने देखा, गोपियां कर रही हैं भाव नेत्र से ये देख रही हैं, ऐसा देखते ही उनकी कबरी खुल गई, एकदम मुग्ध हो गई, कपड़े खिसक गए और देखते देखते अपने पतियों की गोद में गिर पड़े, होश नहीं रहा। कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूप शीलम, शीलम माने क्या, यहां पर शीलन शब्द भी, शील भी बहुत गूढ़ रहस्य को प्रकाश करता है। कहीं भी जागती कोई काम नहीं, ऐसा दोनों का, गोपियों का भी शील और कृष्ण का भी। अप्राकृत राज्य है ना, कोई भी प्राकृत विषय उनको टच नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, इस दर्शन को भी, इस दृश्य को भी दर्शन करना सबके लिए सौभाग्य की बात नहीं है, ये तो गोपियों के लिए ही आस्वादनीय है, उन्हीं के लिए है। उद्धव भी नहीं देख सकते, नारद जी के लिए संभव नहीं है, कोई भी पुरुष रूप में रहने वाला नहीं हो सकता, इसलिए लोभ हुआ, शंकर जी तो बन गए गोपी, पुरुष उसमें जा ही नहीं सकता। इस स्त्रियों को इस भाव वाली जो सिद्धि लाभ किया है प्रेम से, जो पुरुष लोग हैं उनका भी भाव वही हो गया, गोपियों का जैसा भाव और गोपी जैसी होकर के कृष्ण की लीला में सम्मिलित हो सकती हैं या देख सकती हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए बंसी वादन के समय में कोई भी माताएं नहीं आई, कोई भी पुरुष नहीं आया, सखा लोग तक वहां पर प्रवेश नहीं कर सके, उनकी सेवा में राधा कृष्ण की, किशोर किशोरी जी का, किसी पुरुष का कोई भी अधिकार नहीं, बहुत दूर से कुछ सुबल इत्यादि का कुछ है, मधुमंगल का कुछ है, किंतु लीलाओं के समय में नहीं। इसलिए देवियां ने देखा और देख करके मुग्ध होकर के उनके गिर गई अपने पतियों की गोद में। कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूप शीलम सुत्वाच तत् पणित बेण विविक्त गीतम आरुह न दिव्यो विमान गतय स्मरणानुसारा, एकदम काम में मुझ, काम मैंने गोपियों का प्रेम, जो काम है वही प्रेम है, एकदम मुग्ध होकर के वहीं पर गई। ओह देखो तो इनका कितना सौभाग्य है, इन देवताओं की पत्नियों को, देवियों का, अरे पति के गोद में वो गिर गई और पति लोग कह रहे हैं अहो इसका कितना सौभाग्य, हम इनके भावों को तो स्पर्श भी नहीं कर सके, कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं। और अपने पतियों के साथ में कृष्ण का यह दर्शन करने के लिए आई, पतियों को दर्शन नहीं हुआ इनको दर्शन हुआ, कितना इनका सौभाग्य है। सखी बतलाओ तो इन्होंने कैसी तपस्या की थी, अब हम ही ऐसी तपस्या करके दूसरे जन्म में ऐसी देवियों के रूप में हम लोग जन्म ग्रहण कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी हमारे पति लोग अपने साथ में लेकर के कृष्ण के पास में जाएंगे, कहिए चलो चलो से जरा देखाएं करेंगे। अभी देखो ना, अभी अभी जब पीछे वर्णन आएगा कहां जा रही है, टांग तोड़ देंगे, खबरदार यदि घर से निकली तो उसने हां नहीं कुछ कहा और निकल करके चलने लगी, जबरदस्ती पकड़ करके घरों में बंद कर दिए, बंद करके ताला दे करके लठिया लेकर वहीं पर खड़ा हो गया, देखें जो कैसे निकलती है, और कहिए देखो जो कैसे मैं निकलती हूं, निकल गई ना, वो क्या है बिरह ताप धुता शुभा, कैसा सुंदर, जितना उनका शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हो गया। जब तक हमारे जीवन में शुभ और अशुभ रहेगा, जागतिक पुण्य और पाप रहेंगे, ये साधक भी कृष्ण को नहीं आगे भजन कर सकता है। तो इन सिद्धों की तो बात ही क्या है, किंतु भागवत में तो ये लिखा उनका जो शुभ था ने, उनका जो अशुभ था वो ताप से द्रवित होकर के समाप्त हो गया, और जो शुभ था उन्होंने आंखों के माध्यम से हृदय में कृष्ण को लेकर के जो आलिंगन किया उसे उनका जितना शुभ था वो खत्म हो गया। तो अशुभ और शुभ क्या, साधकोचित यहां पर मत समझना, वहां पर बहुत ऊंचा भाव है। गोपियां का अशुभ क्या, जो कृष्ण से मिलन में जो बाधा हो रही है अशुभ, ये दूर हो गया, क्षीण हो गया उन गोपियों को, क्यों, पूर्व जन्म में उन्होंने साधन किया, भावावस्था तक प्राप्त किया, इस जन्म में अभी प्रेम नहीं मिला, अब वो परिपक्व प्रेम कैसे होगा भावावस्था से, इसलिए गोपी गृह में जोग मैंने उनको जन्म दे दिया, और जन्म दे करके नित्य सिद्धाओं से थोड़ा सा मिला दिया, कृष्ण की इन कथाओं को सुनने का सुयोग हुआ, गोपी तो हो गई, किंतु अभी पतियों के साथ में संबंध है, पति और घर के लोग बड़ा प्यार करते हैं, एक बेटा भी घर में हो गया, किंतु कृष्ण में पूर्व प्राग होने से और सिद्धाओं के कुछ संग होने से कृष्ण के प्रति तो खूब तीव्र मिलन की आकांक्षा तो हो गई, पूर्व जन्म में जो सिद्ध नहीं था वो भी सिद्ध होने लग गया, किंतु थोड़ा सा बाकी रह गया था, वही बाकी था, सब लोगों का उसके प्रति प्रेम ये भी जल करके खाक हो गया, तीव्रताप धुता शुभा, ये मिलने में बाधक थी, बाधा थी, जितने भी पतियों से जिनका संग है उनको कृष्ण लीला में नहीं जा सकती हैं, प्रवेश नहीं कर सकती राशि इत्यादि में, दूर से कुछ लक्ष्य कर सकती हैं, सुन सकती हैं, ये सब अशुभ है, यदि होगा तो रस रसाभास हो जाएगा, रस विरुद्ध व्यापार हो जाएगा। इसलिए जिनको नहीं हुआ था पतियों के साथ में संकिंत विवाह हो गया है, करोड़ा हैं गोपियों का नित्य सिद्धाओं का संग हो गया, या कृष्ण ने अहित की कृपा करके कहीं डगर में उनको उनसे भेंट हो गई, तो बस उस लीला में प्रवेश, उनको रास में कोई नहीं रोका, जैसे नित्य सिद्धाओं को किसी ने नहीं रोका, और जिनमें अभी कुछ कमी है उनके लिए रोक लिया, जोग माया ने रोका, उनके पति लोग नहीं रोके, जोग माया ने पतियों के माध्यम से उनको रोक दिया, जो उनका कषाय था कुछ प्रेम में वो उस कषाय को दूर कर दिया, विरह तीव्रता। अब वो मरी नहीं, उनका ये सब दूर होने से जोग माया ने उनको क्या किया, पति के अलक्षित रूप में ही कपाट खुल गया, कपाट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जीवात्मा के लिए कई कपाट खोलने की जरूरत होती है, एकदम कांच में उसको यदि बंद कर दिया कहीं एक इतना भी छेद न रहे, चारों तरफ कांच, तभी उसमें से निकल जाएगी आत्मा, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। बालाग्रसत भागस्य श्रद्धा कल्पितस्य च भागो जीव सभी गे सचा अनंताय कल्पते। अनंत जीव है, एक नहीं है, स्वहम नहीं, अनंत जीव है। तो इनके लिए कपाट में तो कहीं ना कहीं छिद्र तो होता है, उनको छिद्र की भी जरूरत नहीं, बस वो रास में पहले पहुंच गई, पीछे से और गोपियां पहुंची। तो इसलिए कहती हैं ये गोपियां घर में बैठी हुई भावना से देख रही हैं और कह रही हैं, ओ मैं जन्म लेती तो इन्हीं के कुल में जन्म लेती देवी बन करके, और हमारे पति वहां पर पतियों से तो संबंध है, तभी ये पति हमको ले जाते, और बिना किसी बाधा के, कोई भी बाधा नहीं, कृष्ण का रूप तो दर्शन कर लेती, कुछ पुष्प तो उनके ऊपर में चढ़ा देती। हाय हाय हम लोगों को ये सौभाग्य नहीं है, धन्य है ये देवियां। कहते कहते देखती हैं कुछ गायें हैं और उनके बछड़े हैं। देवियों की तो बात छोड़ो, ये तो बहुत बुद्धिमान है और इनको ये संभव है, किंतु जो पशु हैं आज देखो तुम उनकी क्या दशा। गावश्च कृष्ण निर्मुक्त बेनु गीत पीयूष उद्भिद
क्या वो कृष्ण कृष्ण निर्गत
निर्गत बेणु गीत पीयूष मुद्भित कर्ण पूत पिबंत सावास्मत तनपय कौलस्मत बेन। तात्पर्य ये गायों को तो देखो, इन गायों का कितना सौभाग्य है, उनके बछड़ों का कितना सौभाग्य है, मधुर मधुर कृष्ण की बंसी बज रही है, भाव नेत्र से देख रही गायें जो जहां पर हैं, लाखों कोटि गायें, नंद महाराज की कितनी गायें 9 लाख, श्री राम की कितनी गैयां हैं 11 लाख, उपानंद के बेटे जो हैं सुभद्र उनकी भी ऐसी गायें हैं, कोटि कोटि गायें, अनगिनत गायें जो जहां पर हैं, बस जहां कृष्ण के मुख से वेणु की ध्वनि निकली वहीं पर खड़ी हो गई, कान को जो ऐसे कर रही थी उसको उठा दिया, कान को ऐसे ऐसे कर रही हैं, जिधर से वेणु की ध्वनि आ रही है उधर ही एकदम लगा दिया और खड़ी हो गई, आंख बंद कर दिया, एकदम स्तब्ध हो गई। उसके मुख में घासे जो चर रही थी जो ऊपर उठाया, अब उसको होश नहीं, जे गाय जो भीतर ले जाऊं या बाहर ले, बस जहां का तहां बस एकदम पत्थर जैसी स्तब्ध हो गई। यही कृष्ण लीला की विचित्रता है, ऐसा सुंदर रूप है उनका, ने? उनको देख करके चर स्थिर बन जाते हैं, जड़ जंगम बन जाते हैं और जंगम जड़ बन जाते हैं। आगे राजपंचाध्याय में यह सब आएगा, ये किस प्रकार से का स्त्री अंकल बताए तो बेनुगी तो सम्मोहितार चरिता न चले त्रैलोकम, इसमें सब आएगा। जड़ भी चेतन, चेतन जड़ हो जाता है, पर्वत गलने लगता है और नदियां जो चलने वाली है उसका पानी कैसा हो जाता है, बर्फ जैसा गल जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। इस तरह से कह रहे हैं, अरे गायों को तो देखो ये कितना इनका सौभाग्य है कृष्ण की इस वेणु गीत को देख करके, और जहां है वहीं से कृष्ण का रूप भी देख रही हूं, जो गायें पीछे हैं वो क्या कर रही, यही तो कृष्ण की अद्भुत लीला, जोग माया ने कर दिया, जो गाय पीछे हैं, जो बाहर इधर में है उधर में है, जहां है आमने हैं सामने हैं बहुत दूर हैं, वो समझ रही कृष्ण के निकट में, कृष्ण के मुखारविंद की तरफ में देखते और ऐसे करते, एकदम मुग्ध हो गई, जड़वत हो गई। अरे जरा उनके बच्चों को तो देखो, छोटा सा भी बच्चा बछड़ा या बछड़ी, और कृष्ण के इस वेणु गीत को और उनके सुंदर रूप को देखा, देखकर के मुग्ध हो गया। बछड़ा क्या कर रहा था, मैया का दूध पी रहा था, मैया का दूध पीते पीते ही जब सुना, उसने भी कान खड़ा करके उधर से दोना बनाया, ऐसे बना देते हैं, और ऐसे एकदम लगाया और आंख बंद कर दी, अपने आप समाधिग्रस्त हो गया, और दूध जो लिया था वो गले में ही अटक गया, न भीतर जा सका न बाहर, उसको फुर्सत नहीं है, उसको होश नहीं है, वहीं पर रह गया, कौलास्पतस्थु, बस कवल जो था वहीं पर आ गया। गायों का कवल घास का है और इनका कवल किस चीज का, तृण का, दोनों का वहीं पर आ गया, शुद्ध बुद्ध नहीं गई। ये कृष्ण की का सुंदर रूप और उनकी वेणु की ध्वनि गोपियों ने देखा जहा है, देखो तो कितना सौभाग्य है इनका बछड़े का, छोटा सा बछड़ा और कृष्ण के प्रति इतना अनुराग, कृष्ण के निकट होकर के सुन रहा है, कृष्ण के रूप को देख रहा है। गैया का देखो, और कहां हम दुर्भागी, हमारे पति, हमारे सास ससुर, हमारे जेठ के बड़े बेटे या ननद, सभी हमारा घोर विरोधी। अनुमान लगाते हैं, यदि देखा जब बैठी हो तो अनुमान लगाकर कहें कहां से आ रही है, कहां गई थी, ताना मारेंगे। और देखा जो कहीं श्रृंगार कर रही है कुछ, कहां जा रही है, मिलने के लिए जा रही, ताना मारेंगे। अनुमान लगा करके विरोध करती हैं, कोई कारण नहीं तभी कारण का सृजन कर देती हैं मिलने में बाधा के लिए, झूठ मूठ को इस प्रकार से कर रही। यदि श्रृंगार कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, ये तुम्हारा श्रृंगार कैसे गड़बड़ हो गया, इस तरह से उनको बाधा देते हैं। इसलिए यदि हम लोग मर करके यदि गैया या बछड़ा बछड़ी हो जाते तो हमारा जीवन सौभाग्यमय होता। ये सब भी बहुत ऊपर के जो मादन मोदन जैसे हैं, ये सब उसमें है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने सप्तम श्लोक में बतलाया, चैतन्य क्या है, जुगायितं निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायिम जगत सर्वम गोविंद विरहीन में। अब बतलाओ कि जैसे ये महाप्रभु जी कर रहे हैं और गोपियों का विरह देखो तो कैसा स्वाभाविक रूप में, हम लोगों को कभी भजन करते करते ऐसा भाव आता है कि हमारा जीवन वृथा गया। हम वृंदावन में किमपि गुल्म लता औषधि नाम हो जाते, कोई एक तीर्ण गुल्म लता हो जाते, एक वृक्ष भी हो जाते, वहां का एक पशु पक्षी भी हो जाते। क्यों, जत्किंचित तृणगुल्म की कटमुखम गोष्ठे समस्तं हित सर्वानंद मुकुंद दैतं लीलानुकूलं परम शास्त्र मुहुर् मुहुर् निष्ठंकितं जांचया ब्रह्मादिरपि शस्पिहं ततो सर्वं मया इदं वन्दते। वृंदावन के ऐसा कोई भी नहीं है जो कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं रखता, और सभी लोग कैसे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और कृष्ण के लीला के अनुकूल हैं, सहायक हैं। एक उदाहरण देता हूं ना, राधा जी ने मान किया कृष्ण से गोवर्धन में बैठ रही थी, तमक करके वहां से उठी और चलने लगी। कृष्ण बहुत मना रहे हैं, ललिता जी सभी लोग मना रहे हैं, आज वैसे तमकी जो कृष्ण के तरफ में वो फिर कभी नहीं देख रहे, चली जा रही है। बहुत कृष्ण ने चेष्टा किया, जब नहीं मानी तो कृष्ण उदास होकर के बैठ गए। इतने में आगे जब बढ़ी, एक कुंज से एक बड़ा विषधर काला सर्प निकला और राधा जी को उधर से आ रहे हैं और फंस ऐसे जो किया, बस सन्न प्राण रह गया और दौड़ी पीछे की तरफ में, लपक करके कृष्ण की गोदी में गिर गई। लीला के अनुकूल हुआ ना, मिलान करा दिया, जो ललिता नहीं कर सकी, बंसी नहीं, थक गई हार गई, जो नहीं करा सकी, कृष्ण हार गए, सुबल सिद्धाम हार गए, और वो काम किसने किया, ये देखो। इसलिए मैं कभी भी सर्प भी हूं, कीकट बिच्छू इत्यादि कुछ भी हो तो ब्रज में जन्म लो हम, यदि पहाड़ के रूप में निकले तो हो तो गोवर्धन में, पानी हो तो जमुना के में पानी हो करके रहें, कोई जीव जंतु हो जलचर हो तो जमुना में, स्थलचर हो तो इस तरह से गोवर्धन के गिरिराज का पाहन बनूं, पाहन माने पत्थर का टुकड़ा बन जाऊं, इस तरह से वो करता है। ऐसे ही गोपियां कह रही हैं, यदि प्रेम हो तो इन गायों के समान और बछड़ों के समान, कहते ये ऐसा भी हमारी योग्यता नहीं ऐसा कर सकते। अरे इनसे जो कम है, ये सुख पक्षी कोयल मैना तोता और सुख और सारी पपी है इत्यादि, ये भी इनकी तो बात छोड़ो, ये तो बहुत चतुर हैं। गायें तो मनुष्य के समान के भावों को बुझने वाली होती हैं, मनुष्यों के निकट होती हैं। अरे दूर जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, इनका कैसा सौभाग्य है। कहते अहो बतांग बिहगा, अपने सखी को कह रही हैं क्या
अम्बा,
ये किस लिए कह रही हैं? तो ये यशोदा मैया से शायद बातचीत कर रही हैं, इसलिए यशोदा मैया को ये बतला रही हैं जे देखो ये सब वेणु गीत है जो अपनी मैया को सुना रहे हैं, या वैसे ही मैया अपनी अपनी मैया को सुना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये किस लिए कर रही हैं? कभी बाप है ना अपने बेटे, अरे भाई देखो ना यहाँ जा रहा था ऐसा, अरे भाई क्यों कह दिया है? अरे बहनों किसको भी वहां पर संबोधन यहां पर है, ऐसे एकदम भाव में विभोर हो गई अपने सखी को, अहो बताम्ब अरे मैयारी है, मैयारी कहते हैं ना किसी को, कोई कोई ऐसी कोई बात हो गई, अरे मैयारी मैं क्या कहूं, तो ऐसे ही मैयारी कह रही हैं यशोदा मैया को, नहीं तो ये रसाभास हो जाएगा, उलट जाएगा मामला। अहो बतांग बिहगा मुनयो वनस्मी, ओ इस वृंदावन में जो बिहग हैं पशु पक्षी हैं ये साधारण नहीं है, मुनयो मुनि लोग हैं, ये मुनि लोग हैं साधारण नहीं है इस वृंदावन में, और जगह में चिड़िया हैं। कैसे समझेगी वो, कैसे सखी कैसे समझी, अरे इतना नहीं समझ सकती मैं, अरे देखते नहीं हो ये कैसे ये हैं। अहो बताम्ब बिहगा मुनयो वनस्मि, कृष्णे क्षितम, क्या है उस श्लोक, कल्पेणु गीतम आरुष्य द्रुम भुजान, आरुष्य द्रुम भुजान, देखो देखो तो श्लोक द्रुम भुजान मुझे रोज याद है, रुचिर प्रमाणन श्रीमंत मिलित दृशो विगतान्यवाच करें क्या। ओहो बतांग बिहगा मुने वनस्मिन कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणु गीतं आरुह्य दुर्भुजान रुचिर प्रमाणन श्रीमंत मिलित दृशो विगतान्यवाच। अरे मैयारी देखो ना इस बिहग के वृंदावन के जितने पशु पक्षी पक्षी इत्यादि हैं ये मुनि लोग हैं जो कि वेद की शाखाओं का आलंबन करके बैठे हुए हैं। मुनि लोग क्या करते हैं, वेद की एक एक शाखाएं होती हैं 1180 ना कितनी शाखाएं हैं, उसमें गोपाल तापनी इत्यादि एक तरह की शाखा है, छंदोग्य इत्यादि एक शाखा है, उसमें कौन वेद उपनिषदों में
गोपाल तापनी
ये साधारण
तो
मंडुक मांडुक की इत्यादि जो है एक तरह की, ईश केन कठ इत्यादि गोपाल तापनी इत्यादि हैं, ये सब ये तापनिया भी हैं। इसमें से ये मुनि लोग जो वृंदावन वाले हैं ये कैसे हैं, मुनि एक होते हैं ध्यानस्थ समाधिग्रस्त, समाधि में हो जाते कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते हुए, वाणी रहते हुए वाणी का प्रयोग नहीं होता है, आंख रहते हुए आंख का प्रयोग नहीं, तो ये लोग धन्य हैं कि कैसे हैं, हम लोग ऐसा मुनि होना नहीं चाहेंगे, ऐसे मुनियों में हमारी प्रीति नहीं है जो समाधिग्रस्त होकर के आंखों को भी बंद किए हुए कोई भी स्पंदन नहीं है अंगों में कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहे, ये कैसे हैं। क्वेल कुहकती है ये इस वेद की शाखा में है, ये कौन सी शाखा है, भागवत की शाखा, वो लोग तो उपनिषद वाली शाखा पर बैठे हैं, कोई कर्म की शाखा पर, कोई कुछ तरह तरह की शाखाओं पर बैठे हैं, किंतु वृंदावन वाले जो ये पशु हैं सूक और सारी दोनों में द्वंद लग जाता है। सूक कहता है जे हमारे कृष्ण बड़े सुंदर हैं, तो सारी कहती है जब तक कृष्ण के बाएं तरफ में राधा नहीं हो तब तक वो सुंदर नहीं है, जब वो बाएं तरफ में है तभी सुंदर है। कहते कृष्ण मदन मोहन है, अरे मदन बात मोहन की बात रखो, राधा जी क्या है, मदन मोहन मोहिनी है, और नहीं तो केवल राधा के भीन केवल मदन मोहित है, कौन सा मदन में मोहित है, गोपियों के प्रति जो मदन का भाव उसके द्वारा ये मोहित है। इस तरह से दोनों में सुख और सारी में द्वंद चल रहा है वृंदावन की, तो ये देख रहे हैं क्या, ये जो है अवतानी समस्त शक्ति, ये समस्त विषयों से विरक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, वाणी से श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया, ये मौन नहीं रहेंगे, ये भागवत की शाखा पर बैठे हैं। व्यास जी जो हैं, नारद जी हैं, ये कौन सी शाखा पर, भागवत की शाखा पर बैठे हैं। ये लोग ऐसे हैं, कोयल है, तोता है, मैना है, सुखसारी है, पपीहे हैं, मधुर शब्द से कृष्ण का को रुझाते हैं, इसलिए ये लोग कीर्तन प्रधान हैं, अपनी वाणी को भी इसमें लगाए हैं, अपनी अंगों से सेवा करते हैं, आंखों से कृष्ण का रूप देखते हैं। आज कृष्ण की यह कल ध्वनि को सुन करके अहो बतांग बिहगा मुनयो बनस्मिन, ये क्या कर रहे हैं, विगतान्न वाच, और कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस कृष्ण कृष्ण राधे राधे कर रहे हैं और उनकी लीलाओं का गायन करते हैं। सुख कहता है अरे रसिक शिरोमणि, अब आपको सोना उचित नहीं, आप तो स्वयं चतुर हैं, अब तो सूर्योदय होना जा रहा है, अब तो जरा उठिए, प्रबोध देता है, विचक्षण और कुछ कहता है। सारियों में तीक्ष्ण जी हैं, सुभा जी हैं, और एक और तो ये सब राधा जी को प्रबोधन कर रही हैं। तो बतलाओ तो ये साधारण मुनि हैं, इसलिए यहां पर कर रहे हैं, सब बातों को छोड़ करके कृष्ण का रूप दर्शन कर रहे हैं ये, और उनकी मोहिनी वेणु गीत का ये सुन रहे हैं। ये वेद की जो परिपक्व जो ये निगम कल्पतरु का ये जो फल है, इसके शाखा पर बैठे हुए ये लोग देख रहे हैं। यदि हमारा जन्म हो अगले में तो हम लोग ऐसे ही होकर के आए, मयूर नृत्य कर रहे हैं ने? और ये सब देख रहे हैं, बीच बीच में ये लोग भी राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का रूप देख करके इनका जीवन सार्थक हो जाता है, ऐसे हम लोगों का भी जीवन सार्थक। अरे इन ये तो चलने वाले प्राणी हैं, हम तो देख रहे हैं, ये बातचीत भी करते हैं, बोलते हैं। अरे ये नदी को तो देखो, यमुना को, पावन सरोवर को तो देखो, और मानसी गंगा को तो देखो, ये कैसी करती हैं, इनकी धारा उलट जाती है। नद्यास तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित उर्म भुजई मुरारी गृहंति पादु जगलम कमोलोभा। अरे इस नदी को तो देखो, ये कृष्ण की कामिनी है, नदी नहीं है ये, मानसी गंगा क्या, कृष्ण की प्यारी कोई है ये। उसी तरह से जितने वृंदावन के ये सब हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, ये सब कृष्ण की बड़ी प्यारी है, इसलिए नदस्तत उपधार्य मुकुंद गीत उपधार्य, विशेष रूप से निकट से ये नदी जमुना के किनारे खड़े होकर के उपवन में कदम्ब वृक्ष के नीचे कदम्ब पर सहारा लिए हुए त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए अधरों पर मुरली वेणु को रख करके बजा रहे हैं। जिस समय उन्होंने वेणु से गान किया, जमुना जी जा रही थी, रुक गई धारा, लौटने लगी नीचे से, जो कि धारा उनका प्रयाग की तरफ में जा रहा था, वृंदावन से निकल करके इधर वो बजाया उन्होंने यहां पर बंसी बट पर, जो मथुरा की तरफ आ रहा था वो मथुरा से लौट गया वो धारा प्रवाह, और चला किधर में,
वृंदावन,
वृंदावन के, तो यहां पर कृष्ण निकट में पहुंचे और अपने कानों में उठने सुना और सामने कृष्ण को देखा, देख करके एकदम मुग्ध हो गई यमुना जी, हृदय के आवेग को रोक नहीं सकी, उनका जो उनकी जो धारा उनका जो धारा प्रवाह था वो रुक गया बीच में। कैसे रुक गया, ऊपर से तो आ रहा था धारा, आ रही थी, और नीचे वाले इधर गई, दोनों में रुक गई। जब इधर से सामने से भी मथुरा में जब सीढ़ी से उतरते हैं हजारों आदमी, और नीचे से जब चढ़ते हैं बस रास्ता नहीं मिलता, बस सब लोग रुक जाते हैं। ऐसे जमुना की धारा नीचे वाली लौट आई और ऊपर वाली आने लगी, दोनों मिलकर के रास्ता नहीं है जो इधर उधर जाए, दोनों रुक गई। तब उन्होंने क्या किया, धारा प्रवाह रुक जाने से क्या हुआ, इतनी जोर से ऊपर से धारा आ रही या उधर से आ रही, बस घूमने लग गई उधर का ऐसे ऐसे पानी प्रवाह। अरे ये नहीं, काम से उनका प्रवाह ऐसे हो गया, हृदय एकदम नाच उठा आवेग से। ऐसा होने पर उन्होंने क्या किया, अपने आवेग को कमल लिया, कमल हाथों में ले लिया और कृष्ण के चरणों से चढ़ते हुए वो कहां तक पहुंची, एकदम मस्तक छल तक पहुंची। किस लिए, आलिंगन करने के लिए कृष्ण को, अपने प्रियतम को। ये नदी नहीं है, उनकी प्रियतमा है, इसलिए यमुना जी को पटरानी भी कहते हैं। पटरानी कहने से उनको कुछ कम कर देना, प्रियची कहना ही ठीक है। वो पटरानी होंगी कालिंदी द्वारका में, यहाँ पर पटरानी कहना कोई भी सखी नहीं चाहती जी हम पटरानी हैं। इसलिए वो ऊपर उठी, आलिंगन किया, किंतु कृष्ण बजाने में वेणु गीत में इतने तन्मय थे जो उनको ध्यान ही रहा कि कौन आलिंगन कर रहा है क्या कर रहा है। तो बड़ी लज्जित हुई, ये कृष्ण की उपेक्षा कुछ मिली, कुछ वो उनका जो काम भाव था शांत हो गया और धीरे धीरे नीचे उतर आई। उतर करके क्या किया, अपने प्रवाह रूपी अपनी तरंगों रूपी हाथों में कर कमलों में वो कमल को उठाया और उठा करके कृष्ण के चरणों में उपहार दे करके कहा यही हमारे लिए बहुत है, वो मेरे लिए संभव नहीं आलिंगन करना। अरे देखो तो नदियों का क्या स्वभाव, आगे यदि मरी हम तो हम प्रार्थना करती हैं इस यमुना से ही कि हम उसका पानी बन करके आए, उसकी धारा प्रवाह बन करके हम भी नदी हों, मानसी गंगा हो। अभी आप लोग जानते होंगे उस पार में मथुरा के लौह वन, वहाँ पर एक सरोवर है लौह वन में, वो भी उनके लीला का स्थल है, कृष्ण का वहाँ पर नौका विहार इत्यादि लीलाएं होती हैं। इसी सब को ध्यान में रखते हुए गोपियाँ प्रार्थना कर रही हैं यदि हम मरें तो इस जन्म में तो सौभाग्य नहीं है जो कमल का उपहार लेकर उनके चरणों में दें और उनको आलिंगन कर लें। हमारी नंदे और सांसें हमारे पति इसको सुन करके ही दूर से घर से बाहर कर देंगे, जाने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग ऐसा चाहते हैं। इतने में उन्होंने देखा क्या, अरे आकाश में मेघ घूम रहे हैं, कहा जे यदि हो तो मैं मेघ हूं। अरे यमुना में तो प्रवाह है, यमुना में भी अधिष्ठात्री देवता हैं, इन मेघों में क्या, देखो तो इन मेघों को ये क्या करे, दृष्टा तपे प्रज पशुन सह राम गोपाई, फिर राम गोपाई क्या श्लोक, संचारे अंतम अनुभेद उदीरयंतम प्रेम प्रविद्ध उदिता कुसुमावली भी सखुर बधात बपुषा आत्म। देखो तो कृष्ण से इनकी कितनी मित्रता है, कृष्ण के लिए कितना प्राणोत्सर्ग है इनका। सखी मैं यदि हूं तो ये मेघ ही बन, देखो ना कृष्ण का इनका रूप मिलता है ना, सखा है ना ये, कृष्ण के लिए अपने तन धन मन वचन सबको उन्होंने अर्पित कर रखा है। आज ये आकाश मार्ग में जाकर गर्मी का दिन और ये ऊपर से मेघ छत्ता बन करके ऊपर से कुसुमावली का वर्षण कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे गर्जन कर रहा, आनंद के मारे गर्जन कर रहा, ये गर्जन नहीं बल्कि ये स्फुट ध्वनि है, कलत ध्वनि उनकी, मेघ गर्जन कर रहा है। कृष्ण जैसा, कृष्ण की चिंता करते 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 ये भी श्याम बन गया है और ऊपर से पुष्प की वृष्टि कर रहा है। जिधर कृष्ण जाते हैं गोचारण करने के लिए बस वो ये सरकता हुआ उधर ही जाता है ऊपर से छाता बन करके, उनको कभी धूप लगने ही नहीं जाता। देखो तुम मित्र ऐसा, ओ हम लोग भी कभी मेघ हो सकती हैं, गाय तो कुछ सजीव हैं, उसे ये पशु पक्षी भी में कुछ है, नदी में भी कुछ सजीवता है, किंतु देखो तो मेघ, इसे यदि हम लोग मेघ कभी हो सके और कृष्ण की सेवा यदि मेघ जैसा दिखा, हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। देखते देखते ही उन्होंने देखा भाव नेत्र से ये गोवर्धन में ये कृष्ण पहुंच गए और देख करके क्या कहा, क्या एक घंटा हो गया। अच्छा, अब यही श्लोक करके खत्म कर देख करके, अरे देखो तो ये भील कन्याएं जो हैं, पुलिंदियां हैं, पहाड़ी जंगली औरतें हैं जो कपड़ा पहनना भी नहीं जानती और लकड़ी बिनने के लिए या सूखे कंडे को बिनने के लिए ये जंगल में आई हैं। देखो तो कृष्ण के प्रति इनका कितना सुंदर भाव। अब इस बार पुलिंद ही आना चाहिए, इसे कहते पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्चराग, पुलिंदियों का जन्म लेना ही पूर्ण रूप से सार्थक है। जितना अभी तक बतलाया अपने भावों को छिपा रही थी किंतु अब छिपा नहीं सकी उनका भाव। अभी तक अहोत्था भाव से प्रेम को, कृष्ण के प्रति प्रेम को छिपा रही हैं किंतु यहां पर अपने आप व्यक्त अब रह नहीं सकी। कुछ समझ जाती था उसमें आई भील कन्याओं को देख करके, कृष्ण से संबंध नहीं, कृष्ण की किसी वस्तु से भी संबंध नहीं और कैसे इनको प्रेम हो रहा है। उन्होंने देखा जी ये जंगल में गिरिराज की तराई में सानू प्रदेश में घासें हैं सवेरे का समय और उन घासों पर ओस बंदु उसमें लगे हुए हैं मोती जैसे झलक रहे हैं और उन वो मोती कैसे हैं रंगीन लाल लाल है। ये लाल लाल कैसे हो गए कृष्ण के वो कुमकुम लगा पाते, अरे ये तो कुमकुम, ये कुमकुम कहां से आया। गोपियां देख रही हैं वो पुलिंदी नहीं जानती किंतु ये भाव नेत्र से देख रहे वो कुमकुम जो है लाल लाल मोती बेशकीमती मोतिया है। उसको देखा देख करके एकदम मुग्ध हो गई, हृदय में ताप हुआ। बस उनको बटोरने लगी हाथों से और हाथ में जो लालाई आई कुमकुम की अपने मुखारविंद में अपने सारे अंगों में उसे लपेट लिया, एकदम तन्मय हो गई कृष्ण के प्रेम में, शुद्ध बुद्ध खो गई और एकदम मोहित मुग्ध हो गई। कहा जी ये कहाँ का कैसे ये कहाँ से आया कुमकुम, तो उसी के लिए बतला रहे हैं कौन, गोपियां बतला रही हैं भाव में तो पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदाब्जराग। उरुगाय, उरुगाय माने क्या, उरु जो गान करते हैं बहुत मीठे सर से, ये जो कृष्ण है उरुगाय पदाब्जराग, जिनको उरु उत्तम श्लोकों में गाया जाता है किंतु ये उतना ठीक नहीं। गोपियां उरु गायती कृष्ण के संबंध में जो गान करती है, वंदे नंद ब्रजेष्ठी नाम पादुरेण मभिक्षणा जासंग हरि कथोद्गीत पुनात भुवनत्र, तो इसलिए उरु गायत कृष्ण के लिए कह रही हैं। पादाब्ज राग, उनके चरण कमलों में जो ये राग है पादाब्ज, ये कौन कुमकुम है, तो कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगाता है कोई, तो ये कहां से लग गया, ये कहां से लग गया। कहता है कि ये लग गया, कैसे लग गया धीर व्यक्ति इसको समझ सकते, ये लग गया गोपियां अपने अंगों में कुमकुम लगाती हैं। अब ये कृष्ण से जब मिलती हैं, तत्ते सुजात चरणाम्बरु हम स्तनेशु भीताश्वनई प्रियदी दधी मही कर कृष्ण, उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों को धारण किया और वो कुमकुम उसमें लगा, वह कुमकुम लगा घास में और घास से वो कुमकुम को अपने हाथों में स्पर्श करके लगा रही, इतना प्रेम। कृष्ण से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं और ये जो कह रही है उसी का कुमकुम वो लगा कृष्ण के चरणों में और कृष्ण के चरणों से लगा घास में और घास से पानी मिश्रित होकर के उसने उठाया लगाया, इतना दूर का संबंध गोपियां ने किया। जन्म हमारा हो तो ये पुलिंदी करने के रूप में, ऐसा सौभाग्य। किंतु वो नहीं जानते ये हमारे ही अंगराग है, ये कृष्ण बड़ी सावधानी से उसको रखते हैं, यहां तक कि पीताम्बर से पूछ करके उस कुमकुम को अपने पीताम्बर में रखते हैं ऐसे चीज को। तो ये धन्य है पुलिंद कन्या, इन्हीं का जीवन पूर्ण है, कृतार्थ, पूर्ण माने यहां पर कृतार्थ, कृतार्थ है इनका जीवन। देखते देखते ही गोवर्धन पर इनकी नजर आई। अरे देखो तो गोवर्धन गिरिराज को, माने इनसे भी ये गिरिराज गोवर्धन को देखता है कि ये इसके लिए संभव है, किंतु पत्थर को कहां से संभव है। गिरिराज को देखो, हरिदास वर्ज, क्या है वो, हंतायम अद्रबला हरिदास वर्ज, जदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंग तनोति सह गो गणयोस्तयोर्जत पानी यशु यवश कंदर कंदम। गिराजी का स्वभाव देखो, ये हरिदास वर्य, एक हरिदास है युधिष्ठिर महाराज, दूसरे हरिदास हैं उद्धव जी, वो हरिदास वर हैं, वो है हरिदास, ये हरिदास वर कौन, उद्धव, और ये गिरिराज जी क्या हैं, हरिदास वर। इनका जैसा किसी का सौभाग्य नहीं है, जो कि कृष्ण आते ही उनको पानी देते हैं, आचमन करने के लिए पानी, पैरों को धुलाने के लिए पानी देते हैं, मनसी गंगा, मनसी गंगा है, कुसुम गोविंद कुंड, ये नवल कुंड, अस्परा कुंड, उद्धव कुंड, सुरभि कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड और राधा कुंड। देखो तो ये गिरिराज की देन है, यही नहीं अपने पानी से सुशीतल उस भूमि को करते हैं, जिस पर सुंदर सुंदर हरी हरी घासें आती हैं, जिसमें गायें और बछड़े खाते, कृष्ण के सखा है ना, कृष्ण ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे, पहले उनको परिकरों को प्रसन्न करो, गिरिराज यही करते हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये सब, कृष्ण के सखाओं को खाने के लिए क्या करते हैं, सुंदर सुंदर केले, अमरूद, आम, अंगूर, नाशपाती, यहाँ तक कि मधु इत्यादि जो छत्र में हुआ करते हैं, इस तरह से पानी असु यव सकंदर कंद मूलई, इन सबको कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं।